हम सभी का अपना अनुभव है कि हमारे मन की क्या हालत होती है। बड़े होते हैं, विवाह के लिए बेचैन होते हैं, माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए बेचैन होते हैं, कुछ किसी को पता नहीं, सब कुछ ठीक ठाक करके भी आगे नतीजा क्या निकलेगा। जिंदगी की तरफ निगाह डालते हैं तो वहां भी पता नहीं होता कि मौत कब आ जाएगी। बिजनेस करते हैं तो वहां भी बेचैनी रहती है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नौकरी करते हैं तो वहां भी बेचैनी होती है, पता नहीं कोई गलती तो ना हो, ऐसे ना हो कि कहीं गलती हो जाए और बॉस हमको नौकरी से निकाल दे। तो हर व्यक्ति अपने अक्ल से, अपनी कोशिश से ठीक करना चाहता है, लेकिन फिर भी सब कुछ करके भी वो मानसिक बेचैनी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। तो जिसकी बुद्धि का यह निर्णय जब हो जाता है कि मैं संसार में आकर कुछ भी क्यों ना कर लूं, परंतु संसार में कर्म करके मैं इस मानसिक बेचैनी से मुक्त नहीं हो सकता, जिसका यह निर्णय हो जाता है, फिर वो दूसरी चीज की कोशिश करता है। उसने यह भी सुन रखा है कि संसार में ईश्वर भी, इस संसार की सत्ता के पीछे ईश्वर की सत्ता है। जिसने उसको जानने की कोशिश की, उस ईश्वर की भक्ति की, उस ईश्वर की उपासना की, उसके मन को चैन आ जाता है। क्योंकि ऐसे उदाहरण भारत में तो बहुत देखने को मिलते हैं, जिनको हम संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, अवतार कहते हैं, या जिनको हम भक्त कहते हैं, कि जिसने भी ईश्वर की सही भक्ति की उसके मन को चैन आ जाता है। तो मैं ईश्वर की भक्ति प्रारंभ करता हूं मन की चैन के लिए, लेकिन अनुभव क्या करता हूं, जैसी जिसने उपासना बताई, पूजा बताई, मैं प्रभु की पूजा करता हूं, लेकिन साथ में सोचता रहता हूं कि जो मेरे जीवन में दुख आ रहा है, जिसके कारण मन बेचैन है, वो दुख किसी प्रकार मेरा दूर हो जाएगा। मतलब यह है कि कर्म फल की आशा भी लगी रहती है और ईश्वर की उपासना भी चलती रहती है। दसियों वर्ष भी जाते हैं, बीसों वर्ष भी जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी मानसिक बेचैनी वहीं की वहीं बनी हुई। तो चाहे मैं संसार में कर्म करके बेचैनी को दूर करने की कोशिश करूं, चाहे मैं ईश्वर की उपासना करके मन की बेचैनी को दूर करने की कोशिश करूं, मेरी समस्या का हल निकल नहीं पाता। इसीलिए सत्पुरुषों ने इस कर्म योग का और भक्ति योग का विज्ञान बड़ी गहराई से समझाने की कोशिश की। इस विज्ञान को यदि ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि जो दिल से ईश्वर की उपासना करना चाहता है, दिल से ईश्वर की भक्ति करना चाहता है और ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, कोई कारण नहीं है कि वो इसमें फेल हो जाए। कई बार ऐसा हमारे दिमाग में आता है कि गीता कहती है कर्मण्येव वाचारस्तु, कर्म करने मात्र में तेरा अधिकार हो, वो कर्म का अधिकार देती है, इसका मतलब कर्म की प्रेरणा देती है, इसी को वो कर्मयोग समझते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसको हम सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर समझने की कोशिश करें। सत्पुरुषों ने वास्तव में जहां कर्मयोग की बात कही है, वहां भक्ति योग की बात साथ ही की। कर्म और भक्ति ये दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ संग चलती हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं। सबसे पहले गुरुदेव के दो वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, उनके वचन सुने, उसके पश्चात गीता की बात की जाएगी। गुरुदेव संतावलास में लिखते हैं, बुद्धि की चंचल हालत ही संसार का स्वरूप है और बुद्धि का निश्चल होना ही स्वरूप का बोध होना है, और कर्तापन अभिमान जब तक बुद्धि में छाया हुआ है, तब तक कर्म फल द्वंद की भयानक वासना बुद्धि को एक लम्हा भी अकर्म नहीं होने देती। इस वास्ते अधिक यत्न प्रयत्न से अपने कर्तापन को त्याग करना
और साक्षी स्वरूप को कर्ता हर्ता जानना और द्वंद खेद की आसक्ति से असंग होना समर्पण बुद्धि करके, यह ही कल्याणकारी योग है। इसमें सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि बुद्धि की जो चंचल हालत है वही संसार का स्वरूप है, और बुद्धि का निश्चल हो जाना ही स्वरूप का बोध होना है या ईश्वर का दर्शन करना। और बुद्धि की चंचल हालत कैसे दूर हो सकती है, वो कहते हैं कि जब तक बुद्धि में कर्तापन छाया हुआ है, कर्तापन अभिमान कि मैं करने वाला हूं, जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं और जैसा फल प्राप्त करना चाहूं वैसा फल प्राप्त कर सकता हूं, ये जो निश्चय बुद्धि में बैठा हुआ है, इसके कारण ही बुद्धि निरंतर बेचैन रहती है। क्योंकि ना तो हर कर्म ये जीव कर सकता है, ना जैसा फल चाहे वैसा ये प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपने कर्तापन का त्याग करना और साक्षी स्वरूप को कर्ता हर्ता जानना और द्वंद खेत की आसक्ति से असंग होना। द्वंद खेत क्या है? ये जो कर्म फल होता है, जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है, वो या तो हमारे मन के अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है, या सुखदायी होती है या दुखदायी होती है। तो इसी को द्वंद खेद कहते हैं। तो कहते हैं कि इस द्वंद खेद की आसक्ति से असंग होना समर्पण बुद्धि करके, कहते हैं यही कल्याणकारी योग है। अब देखिए, यहां कहीं कर्म करने की मनाही नहीं है, मनाही है कर्म फल द्वंद में आसक्ति रखने की मनाही। आगे क्या कहते हैं वो, नाम के दृढ़ निधिध्यासन से और तमाम कर्म फल प्रभु आज्ञा में समर्पण करने से कर्तापन अभिमान का सहज ही अभाव हो जाता है, ऐसे निश्चय को ही भक्ति योग कर्म योग करके कहा गया है। तो कर्तापन जो है अभिमान दूर करने के लिए मनुष्य नाम का या मंत्र का स्मरण करता है, जिसको हम उपासना कहते हैं, और कर्म फल जो है, जो कुछ भी संसार में मेरे द्वारा कर्म हो रहे हैं उनका जो फल है वो सुख रूप होगा या दुख रूप होगा, उस कर्म फल को मैं प्रभु आज्ञा में समर्पण कर देता हूं। अर्थात प्रभु ने मेरे भाग में जो लिख रखा है उसके अनुसार ही मेरे जीवन में सुख और दुख आएंगे, इसीलिए मैं कर्म फल को प्रभु आज्ञा में समर्पण करके प्रभु की याद करता हूं। वो कहते हैं कि यही भक्ति योग और कर्म योग करके कहा जाता है। और गीता के भी सुनने, गीता में भी आता है इसी के बारे में, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यही समता योग कहा जाता है। कि योग में स्थित हुआ कर्मों को कर और सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखता हुआ, चाहे कर्म में तुझे सफलता मिले चाहे विफलता मिले, इन दोनों में ही तेरा समभाव रहना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब योग में तू स्थित रहेगा और उस हालत में कर्म करेगा। तो अब बताइए, यदि कोई केवल कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करना चाहे तो कैसे वो ईश्वर प्राप्ति करेगा? तो गीता कहां कर्म का संदेश दे रही है? गीता तो संदेश ये दे रही है, तो योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। तो इसका मतलब संसार में हम लोग जो कर्म कर रहे हैं कि ईश्वर को तो भूल गए, ईश्वर की उपासना के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। कहते हैं कि गृहस्थ में बड़े बिजी हैं, इतने कर्तव्य हैं कि कहां फुर्सत है ईश्वर को याद करने की, दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती, नौकरी से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो संसार के कर्म करते हुए हम शांति चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, पूरी तरह से ईश्वर को भूल भूल। तो गीता भी और समता विलास भी बड़ा स्पष्ट संदेश दे रही है और ये साथ साथ व्याख्या कर रही है कि जो ये कर्म योग और भक्ति योग है ये दोनों संग संग चलते हैं, अकेला कुछ भी नहीं चलता। ईश्वर की भक्ति करोगे तो बताओ कि सारे कर्म छोड़ दोगे? यदि छोड़ना भी चाहो तो क्या वो छूट सकते हैं? तो इसीलिए सत्पुरुषों के द्वारा इस विज्ञान को समझना पड़ता है। आगे इस विषय को समझने से पहले एक चीज और देखें, हमारे अंदर जो बेचैनी होती है ये, या दुख होता है, ये बेचैन या दुख है कौन? यदि मेरे बारे में कोई बात करे तो मैं तो यही समझूंगा कि इस शरीर के कारण मैं बेचैन हूं और मैं अपने आप को शरीर ही समझता हूं। मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा साइज, मेरा वेट, रंग रूप, सब कुछ मैं अपने आप को केवल शरीर समझता हूं। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि शरीर से शांति का या संतुष्टि का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जबकि मेरी धारणा यह है कि शरीर में शांति आ जाए तो मैं शांत हो जाऊं। तो पहले इस बात का निर्णय करके देखें, यदि शरीर आपका शांत हो भी जाए तब आपको शांति मिल पाती है या नहीं मिल पाती? दो मिनट के लिए विचार करें, रात्रि को जिस समय हम विश्राम करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, और जिस समय हमको निद्रा आ जाती है, उस समय हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 100% शांत है, वो हमको मुझको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। शरीर जब पूरी तरह से शांत है लेकिन नींद अभी गहरी नहीं हुई है, उस हालत में मुझको स्वप्न दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। जब स्वप्न देखता हूं, जागने पर यदि कोई मुझसे पूछता है तो कहता हूं जैसे मेरे मन में संकल्प आया वैसे ही स्वप्न मुझे दिखाई पड़ गया, जैसे मेरे मन में वासना थी उसके अनुसार स्वप्न की रचना बन गई। लेकिन सोचने की बात यहां पर यह है कि जिस समय मैं स्वप्न देख रहा हूं उस समय मेरी मानसिक बेचैनी ठीक उसी प्रकार की बनी हुई है या नहीं जिस प्रकार मैं इस समय जागृत हालत में हूं? खुली आंख से जब संसार में विचरता हूं, संसार में कर्म करता हूं, सब कुछ करके भी मेरे मन की बेचैनी बनी रहती है, सुबह घर से निकलते ही मेरे मन की बेचैनी शुरू हो जाती है, चाहे दफ्तर से लौटूं या काम से लौटूं, मैं देखता हूं कि मेरा मन बेचैन। तो मानसिक शांति एक मिनट के लिए भी 24 घंटे में मुझको नहीं मिलती, और ठीक वही हालत सोने के बाद भी स्वप्न जगत में भी मेरी वही हालत होती। तो यहां विचार करने की बात यह है कि शरीर तो मेरा पूरी तरह से शांत है, मैं फिर भी बेचैन कौन हूं, क्यों क्यों? तो इसका मतलब यह है मैं वो हूं जिसका तीन काल शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए सत्पुरुष पुनर्जन्म की बात करते हैं कि ये जीव का शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये जीव इसमें से निकल जाता है, तुरंत इसको नया शरीर मिल जाता है, और नए शरीर में फिर उसको यही मन, यही इंद्रियां, यही बुद्धि इसको वापस मिल जाती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इस पुनर्जन्म का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, हम स्वप्न में खुद ही देख लेते हैं। स्वप्न में हमको नया शरीर मिलता है कुछ देर के लिए, उस नए शरीर से नए नए कर्म करते हैं। तो विचार करने की बात यह है कि ये शरीर जब सोने के बाद शांत हो गया उसके बाद भी मेरी बेचैनी तब भी खत्म नहीं हुई। तो सत्पुरुष इसी बात को कहते हैं कि तू हर हालत में बेचैन रहता है। तो उस समय जब मैं जागता हूं तब मेरी होश, मुझको होश आती है कि वो बेचैनी का कारण क्या था। सोते समय वक्त जब मैं स्वप्न देख रहा था उस समय मेरी बेचैनी का कारण क्या था, तब बुद्धि में ये बात आती है कि मन की जो वासना थी, मन के अंदर जो संकल्प उठ रहे थे, इच्छाएं उठ रही थी, उसके कारण मैं स्वप्न देखा। यदि मन के अंदर वासना नहीं उठती तो मैं गहरी नींद का आनंद लेता। आप देखते ना, कभी कोई बड़ी खुशी मिल जाए या कोई बड़ा गम हो जाए, घंटों नींद नहीं आती, उस समय आपको पता लगता है कि मन के अंदर जो संकल्प उठ रहे हैं ये मुझको सोने नहीं दे रहे। तो मनुष्य की जो बेचैनी का कारण है वो शरीर नहीं है, मनुष्य की बेचैनी का कारण उसका अपना मन है। और मन है क्या? मन में केवल वासना की तरंगे उठा करती है, इच्छाओं की तरंगे उठा करती है, जिसके कारण मैं बेचैन होता हूं। इसी मैं का नाम सत्पुरुष बुद्धि करके कह रहे हैं, जो वचन आपके सामने पढ़ा गया। उन्होंने कहा बुद्धि की चंचल हालत ही संसार का स्वरूप है और बुद्धि का निश्चल होना ही स्वरूप का बोध होना है। यदि किसी प्रकार ये बुद्धि इसके मन के चंगुल से आजाद हो जाए या वासना के चंगुल से आजाद हो जाए तो बुद्धि अपने स्वरूप में, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ये स्थित हो जाती है, या यूं कहें कि इस जीव को ईश्वर का दर्शन हो जाता है। उस समय दुनिया की कोई वस्तु, कोई परिस्थिति इसको बेचैन नहीं करती। कृष्ण ने खुद कितने युद्ध किए और अर्जुन को भी संदेश दे रहे हैं युद्ध करने का। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध करते हुए भी शांति भंग नहीं होती। वो इस रहस्य को कृष्ण जानते हैं कि युद्ध जैसा भयंकर कर्म करते हुए भी मनुष्य मानसिक बेचैनी से मुक्त रह सकता है। इसीलिए सत्पुरुषों के द्वारा इस विज्ञान को समझने की कोशिश करें ताकि ये हमारे जीवन में सही रूप में अमल में आ सके। तो इसीलिए कुछ सिद्धांत समझना बड़ा जरूरी है। गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। हे अर्जुन, सारे भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर स्वयं विराजमान होकर सारे भूत प्राणियों को संसार में अपनी माया द्वारा भरमाता है। इस यंत्र रूपी शरीर में बैठे हुए सारे भूत प्राणियों को वो अपनी माया से भरमाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो जीवन चक्र संसार में घूम रहा है, इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो ईश्वर के हाथ में है, जो इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है। ये बात गीता कह रही है। अब जितने भी अवतार होते हैं वो सारे यही बात कहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कुछ दूसरी बात कहती है। इसलिए वो तो मुसीबत से मुक्त रहते हैं, जितने भी अवतार हैं, जितने भी ऋषि हैं, हम मुसीबत में फंसे रहते हैं क्योंकि हमने अपनी गलत धारणाएं बना रखी हैं। हम उसके अनुसार नहीं सोचते जिसके अनुसार गीता सोचने को कह रही है, ये गुरुदेव सोचने के लिए कह रहे हैं या अन्य ऋषि सोचने के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं दो तीन बातें सत्पुरुषों के प्रश्न उत्तर के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रश्न हम सबका है, यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा जिसका ये खुद का ये प्रश्न ना हो। मैं अपनी बात कुछ नहीं कहता, केवल जो बात इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि रमण ने कही, महात्मा मंगतराम जी ने कही या गीता ने कही, केवल वो बात आपके सामने रख रहा हूं। वो प्रश्न भी रख रहा हूं, वो उत्तर भी रख रहा हूं, ताकि हम अपनी सोच को इन सत्पुरुषों की सोच के अनुसार बदलें। याद रखिए, शांति आपको तभी मिलेगी। यदि ईश्वर की भक्ति करनी है और उसमें सफलता चाहते हो तो सफलता आपको तभी मिलेगी जिस दिन आपकी बुद्धि का भी निर्णय ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा कि सत्पुरुष खुद बयान कर रहे हैं। एक दिन महर्षि रमण से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, महर्षि, एक व्यक्ति उत्तम कर्म करता है, यानी अच्छे कर्म करता है, एक व्यक्ति उत्तम कर्म करता है लेकिन शुभ मार्ग पर चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ता है। ऐसे कई लोग आपको देखने को मिलेंगे, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है
लेकिन बेचारा दुख भोग रहा है।
एक व्यक्ति उत्तम कर्म करता है लेकिन शुभ मार्ग पर चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति बुरे कार्य करके भी आनंद से रहता है, ऐसा क्यों होता है? अब देखिए महर्षि रमण क्या उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि दुख और सुख पूर्वकृत कर्म अर्थात प्रारब्ध का परिणाम है। तेरे वर्तमान जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो कहते हैं कि ये तेरे पूर्वकृत कर्म या प्रारब्ध का परिणाम है, वर्तमान कर्म का नहीं। बड़ी खास बात है, दुख सुख तो तेरे जीवन में आ जा रहे हैं लेकिन ये तेरे वर्तमान कर्म का परिणाम नहीं है, ये तेरे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। दुख सुख क्रमानुसार यानी एक के बाद दूसरा आते रहते हैं। मनुष्य को इन्हें बिना बेचैन हुए धैर्य सहित सहन करना अथवा भोगना चाहिए। मनुष्य को सदा आत्मनिष्ठ रहना चाहिए। कर्मरत रहते हुए हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और यदा कदा प्राप्त दुख अथवा सुख से विचलित नहीं होना चाहिए। सुखी वही होगा जो दुख सुख के प्रति उदासीन रहे। और यही बात गीता कह रही है, यही बात गीता कह रही है, कर्मण्य वात का रस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मण। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना हो। ये बात भी गीता वही कह रही है जो महर्षि रमण कह रहे हैं। इसी को महात्मा मंगत राम जी इसी का उत्तर किस प्रकार दे रहे हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि इस जगह के अच्छे या बुरे कर्मों का असर हरेक जीव पर पूरा सफलता युक्त प्रतीत नहीं होता। अर्थात वर्तमान जीवन में जो कर्म करते हैं तो उसमें अच्छे कर्म करके बुरा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करके अच्छा फल मिल जाता है, ऐसा लगता है। कहते हैं कि इस जगह के अच्छे या बुरे कर्मों का असर हरेक जीव पर पूरा सफलता युक्त प्रतीत नहीं होता। जैसे कि अच्छे कर्म करने वाले दुखित और बुरे कर्म करने वाले सुख स्वरूप में विचरते हुए मालूम होते हैं, सो कई जन्मों के कर्म समय समय पर फल देते हैं। इस वास्ते जो बुरे कर्मों में सुख प्राप्त कर रहा है उसको किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसे ही अच्छे कर्म करने पर दुख की प्राप्ति पिछले जन्म के मलिन कर्मों के अनुसार ही है। ये कर्म चक्कर का खेल है, समय आने पर वर्तमान अच्छे या बुरे कर्मों का भी पूरा फल फल प्राप्त होगा, ऐसा निश्चय होना चाहिए। गुणी पुरुष पूरी कोशिश करके अच्छे कर्म करे ताकि बिगड़ी हुई सुधर जावे और आइंदा के वास्ते सुखदायी होवे, ये यत्न कल्याणकारी है। तो गीता जो कह रही है कि ते संगो अस्तु अकर्मणि, कि तेरा कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते ना, कर्म करना और ना करना ये दोनों चीज मेरे हाथ में, तो इसीलिए कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मैं यदि ईश्वर की भक्ति करूं तो घर के काम छोड़ दूं तभी ईश्वर की भक्ति हो पाए, ऐसा हम लोगों की सोच। तो उसके बारे में महर्षि रमण से प्रश्न किया उनके एक शिष्य ने, तो महर्षि क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि यही बातें हैं जो हमको बार बार परेशान करती हैं, इसका ठीक उत्तर हमको पता नहीं लग पाता, तो सत्पुरुष ही इसका सही उत्तर दे पाते हैं। ये अक्सर ये हमारे यहाँ बीमारी देखने को मिलती है कि माताएं बड़ी परेशानी होती है, घर की स्त्रियां, कि पति यदि ईश्वर के मार्ग पर चला तो सबसे पहले खतरा उनको ये होता है कहीं मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं ये संन्यास लेकर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं ये भगवा वस्त्र धारण नहीं कर लेंगे, हम लोगों की चिंता फिक्र बंद तो नहीं कर देंगे, पता नहीं कितने प्रकार की चिंता उनको हो जाए। तो सत्पुरुष का उत्तर आपको ये संतुष्ट करेगा, जरा ध्यान से सुनो। वो पूछता है हमारे लिए कर्तव्य पालन उचित है अथवा नहीं। वो व्यक्ति पूछता है हमारे लिए कर्तव्य पालन उचित है या नहीं, मतलब जो कर्तव्य कर्म बनता है गृहस्थ में रहते हुए या संसार में रहते हुए वो करना उचित है या नहीं। महर्षि क्या कहते हैं, कहते हैं अवश्य ही, यदि तुम अपना कर्तव्य पालन ना करने का प्रयास भी करो तो तुम्हें बाध्य होकर कर्तव्य पालन करना होगा। जिस कार्य हेतु देह का आगमन हुआ है उसे उसकी पूर्ति करने दो। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन को प्रिय हो अथवा अप्रिय उसे युद्ध में संलग्न होना ही होगा। तुम्हारे सम्मुख निर्धारित कर्तव्य होने पर तुम उससे बच नहीं सकते और ना ही तब तुम्हारा कर्मरत रहना संभव है जब तुम्हें कर्म करने की बाध्यता ना रह गई हो, अर्थात जब तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म संपन्न हो गया हो। संक्षेप में कर्म चक्र चलता रहेगा और तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा, तुम्हारे लिए जितना निर्धारित अंश है उसे पूरा करना होगा। वो आगे पूछता है कि ये किस प्रकार संभव है, तो महर्षि कहते हैं नाटक में कार्यरत अभिनेता की भांति राग द्वेष से रहित होकर। अब बताइए गीता का जो श्लोक था जो कह रहा था कि कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे फल में कदापि नहीं। मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि, तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। अब इसमें बचा क्या हमारे पास, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म फल की वासना सामने रखकर करते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूं बच्चों के सुख के लिए, मैं अच्छे घर में शादी कर रहा हूं अपने सुख के लिए, तो जो मेरा पैसा कमाने का कर्म है या विवाह अरेंज करने का कर्म है तो इस कर्म का फल तो मैंने सामने पहले रखा ना, तो फल की आसक्ति रख के मैं कर्म कर रहा हूं। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, साधारण सी बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कई बार हो भी जाता है और नहीं भी होता है, तो ठीक मन की माफिक नहीं होता, कोई ना कोई कमी रह जाती है इसमें, तो इसीलिए हमारी मानसिक बेचैनी बनी रहती है। लेकिन ये सत्पुरुष ने ये गीता लिखी क्यों, कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का संदेश दिया क्यों, क्या युद्ध करने के लिए गीता का संदेश दिया था? अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्त करने के लिए संदेश दिया। गीता के अंत में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू सारे कर्तापन को छोड़कर, देखिए सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये होता है कि तू अपने कर्तापन को छोड़कर, क्योंकि मूल बीमारी तो वही है, तूने जो वेदों में पढ़ रखा है शास्त्रों में पढ़ रखा है अन्य लोगों से सुन रखा है कि मैं कर्म करके देश का भला कर दूंगा लोगों का कल्याण कर दूंगा, तरह तरह के धर्म का पालन की तूने सोच रखी है, ये जो तेरे अंदर कर्तापन बैठा हुआ है यही तो तुझको बेचैन किए हुए, तो तेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जो कुछ होगा वो प्रभु के करने से होगा, तो तुझको पूरी तरह कर्तापन का त्याग करना पड़ता है, पूरी तरह से ईश्वर आश्रित होना पड़ता है। तो भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तू मेरी शरण में आ जा। यदि वास्तव में उसका संस्कृत मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब है कि मैं ही सबकी शरण हूं, ईश्वर ही सबकी शरण है, जो जीव भी ईश्वर की शरण में चला जाता है वही सुख प्राप्त करता है, वही आनंद प्राप्त करता है, उसके हटकर कोई भी संसार का जीव सुख प्राप्त या आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ये गीता का, सारे सत्पुरुषों का, सारे शास्त्रों का फाइनल निर्णय। इसीलिए वो कहते हैं कि ना तो तू ये सोच कि मैं कर्म नहीं करूंगा,
ना तू ये सोच कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका निश्चित फल प्राप्त जरूर करूंगा, ये भी मत सोच। तू ये सोच कि इस शरीर से जो भी कर्म बन पा रहा है, बुद्धि का उपयोग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म इसका बन इससे बन पा रहा है वो इस शरीर का प्रारब्ध है। प्रभु ने इस शरीर को जो संसार में पैदा किया है तो इससे जो कर्म होने हैं वो भी निश्चित कर दिया, और उन कर्मों का फल भी उसने निश्चित कर दिया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तेरी कर्म ना करने में भी रुचि ना होवे, कि मैं कर्म नहीं करूंगा। अभी तो कह रहे हैं कि युद्ध चाहे तू चाह या ना चाह, युद्ध तो तुझको करना पड़ेगा। तो कहां कर्म है अर्जुन के हाथ में, सोच के तो देखो। तो कर्म अर्जुन का शरीर वही कर पाएगा, वही कर्म को कर पाएगा जो कर्म उसके लिए निर्धारित हो चुका है। और यही बात फल के साथ भी, कि जो कुछ भी फल तेरे मन के अनुकूल या प्रतिकूल, सुखरूप या दुखरूप, वो भी निश्चित है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही तुझको मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जिस मनुष्य ने शांति प्राप्त करनी है या सुख प्राप्त, सही सुख प्राप्त करना है, उसको ईश्वर परायण होकर संसार में जीना पड़ता है। ये काम तभी हो सकता है जब ये जीव सुख और दुख दोनों से ऊपर उठने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ठीक उसी प्रकार आते जाते रहते हैं जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन। मनुष्य मात्र सारी की सारी आयु इस भ्रम में ही व्यतीत कर देता है कि मैं एक दिन सुखी जरूर हो जाऊंगा, अपने बच्चों को भी, अपनी पत्नी को भी, अपने पति को भी सुखी जरूर कर दूंगा, इस भ्रम में सारी आयु व्यतीत कर देता है। लेकिन अंत में सतपुरुष कहते हैं कि आशा माही जन्मिया, आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहा। ये आशा की प्यास लेके पैदा होता है, उसी प्यास को लेके मर जाता है, और जितने दिन जीता है उतने दिन भी उसी आशा की प्यास को लेकर जीता। तो इसकी हालत ये है। तो इसीलिए इसको एक चीज सोचनी चाहिए, जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। जो बात गीता कह रही है वो महाराज जी उसी को बड़े सरल रूप में बात कर रहे हैं। जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। ये बुद्धि का निश्चय चाहिए जिसने ईश्वर की भक्ति करनी है। ये है कर्मयोग, पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित हो जाना। हम सोचते हैं ना कि यदि मैं आश्रित हो गया तो मैं निकम्मा हो जाऊंगा। अरे गीता यही तो समझा रही है कि जिस कर्म, महर्षि रमण यही तो बात कह रहे थे अभी, कि जिस कर्म को करने के लिए यह शरीर पैदा हुआ है वो सारे कर्म इसके द्वारा होंगे ही, तू चाह या ना चाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गृहस्थी महर्षि रमण के पास पहुंचा, उनसे कहने लगा, तिरुवन्नमलाई की बात है, अरुणाचल पर्वत पर वो समय विराजमान थे, वो कहने लगा मेरी तो ईश्वर भक्ति की इच्छा है, मैं ईश्वर भक्ति करना चाहता हूं, इसीलिए गृहस्थ में मेरा मन नहीं लगता, मैं संन्यास लेना चाहता। महर्षि रमण बोले कि ये काम तो तुम घर पे रहकर भी कर सकते हो। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि महर्षि फिर आपने संन्यास क्यों लिया, क्योंकि महर्षि 16 वर्ष की आयु में जब वो आठवीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय वो घर छोड़कर तिरुवन्नमलाई आ गए थे, उसके बाद वो कहीं गए ही नहीं, 70 वर्ष की आयु तक वहीं रहे। तो आपने संन्यास क्यों लिया? तो महर्षि रमण क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने संन्यास लिया नहीं, ये मेरा प्रारब्ध था, और तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं, तुम्हारा प्रारब्ध यह है कि तुम घर में रहोगे
तुम कितनी भी कोशिश कर लो संन्यास ले ही नहीं सकते, क्योंकि सत्पुरुष तो त्रिकालदर्शी होता है ना। इसीलिए विशेषकर माताओं को यह बात समझनी चाहिए कि कई बार जो भयभीत हो जाते हैं ना, मेरा पति यदि धर्म मार्ग पर चला तो मेरी जिंदगी तो उजड़ जाएगी, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। महर्षि रमण की यह बात याद रखो, गीता की भी बात याद रखो, महाराज जी की बात याद रखो कि इस शरीर ने जहां रहना है यह रहेगा, और यदि प्रारब्ध में संन्यास लेना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। महात्मा बुद्ध देख लो ना, एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद, कितनी सुंदर स्त्री थी, कितना बढ़िया राजपाट था, कितना सुंदर उनका बालक था, चल पड़े, सब कुछ छोड़कर चल पड़े। तो हमारा तो दिल दहल जाता है ना, उस पत्नी का क्या हुआ होगा, उसके माता पिता की क्या हालत हुई होगी, इसका राजकुमार घर छोड़कर जा रहा है। लेकिन कोई क्या कर सकता है, वो उनका प्रारब्ध था, उनका सारा जीवन संत बनने के बाद उनकी प्रारब्ध लीला थी। गुरुदेव भी देखो ना, खुद तो उसकी ईश्वर का दर्शन कर चुके थे कि काहे को जंगल जंगल, गांव गांव, शहर शहर, मारे मारे घूमते, काहे को घूमते रहे। ये वाणी, ये वचन, ये आज जो आपके सामने पढ़े जा रहे हैं, ये काहे को बेचारे वो ये वाणी उच्चारण करते रहे, ये वचन लिखते रहे, क्या जरूरत थी उनको। मां जी प्रेमी से कहते थे, प्रेमी ये भी मजबूर है, किसी के हुक्म के कारण को ये करना, ये सब करना पड़ता। प्रेमी नहीं आते थे उनके पास, उनकी मिन्नतें भी वो करते थे, उनकी खुशामद भी करते, प्रेमी आया करो। एक पूर्ण ऋषि, एक अवतार, वो ये काम कर रहा है, हम लोगों की खुशामद कर रहा है, जो दो कौड़े के आदमी, ये उनकी प्रारब्ध लीला। वो प्रभु अवतार जब लेता है हमारे मनुष्य के कल्याण के लिए लेता है, वहां इच्छा का कोई चक्री नहीं है। गुरुदेव के अंदर यदि कोई इच्छा बाकी बची थी तो फिर वो उनको गुरु कहा ही नहीं जाता। जिस गुरु के अंदर कोई इच्छा बाकी हो वो गुरु कहलाने योग्य है ही नहीं। गुरुदेव ने खुद कहा है, प्रेमी जीवन गाथा में ये बात आती है, जब तक एक इच्छा भी अंदर बाकी रहती है ईश्वर अनुभव नहीं हो सकता, ये इनके अनुभव की बात है। ये वर्ष गुरुदेव के खुद के हैं। जब तक अंदर एक इच्छा भी बाकी है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता, ये इनके अनुभव की बात है। अब बताओ हम लोग कितनी इच्छाएं लेके घूमते रहते हैं और फिर कहते हैं ईश्वर दर्शन भी हो जाए, कोई गुरु मिल जाएगा वो गारंटी लेता है ईश्वर दर्शन करा दूंगा, तू मेरी पूजा करते रहे मैं तेरे काम सिद्ध करते रहता हूं। तो जो गुरु वासना के सागर में आपको ढकेल दे वो गुरु है या शैतान है, ये तो शास्त्र ही निर्णय कर पाएंगे। तो ये जो कर्म योग और भक्तियों की बात जो आती है ये इसी वास्ते आती है कि मनुष्य संसार में कर्म करते हुए निरंतर बेचैन रहता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये इस बेचैनी से मुक्त नहीं हो पाता, और मरते वक्त तो इसकी अपनी और इसके घर वालों की क्या दुर्दशा होती है हम खुद ही देखते हैं, किस बेचैनी में यह मनुष्य प्राण त्यागता है। जो माया इकट्ठी की थी, जो संसार बसाया था, ये जब इसके सामने ही उजड़ता है, इसके सामने ही छूटता है, तो अंदर कैसा दिल टूटता होगा, जरा विचार कर। काहु ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामायण तो बड़ा स्पष्ट कह रही है, लेकिन हम किसी की बात मानने को ही तैयार नहीं। हम तो कहते हैं कि मैं कर्म करके अपने दुख दूर कर लूंगा और सुख की प्राप्ति कर लूंगा, अपने लिए भी अपने संतान के लिए, इसलिए उनके तीन पीढ़ी की सोच लेता हूं। जबकि सत्पुरुष कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सुख दुख का पूरा अकाउंट लेके संसार में आया है, कर्मों का अकाउंट भी लेके आया है, तू ना कर्म बदल सकता ना फल को बदल सकता। तो फिर मनुष्य ने करना क्या है, मनुष्य ने एक काम करना था कि शांत चित्त होकर इस बात पर विश्वास करके कि जब सुख दुख मेरे हाथ में है ही नहीं, वो मेरे प्रार्थ अनुसार मेरे जीवन में आएंगे और जाएंगे, तो इस जन्म को मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूं। तो तूने सुख और दुख के लिए नहीं जीना है, तूने जीना है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जो ईश्वर खुद आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, शांत रूप है, तेरे हृदय में ही विराजमान है, इसलिए तूने बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़कर अंतर्मुखी वृत्ति का निर्माण करना है। और उसके लिए जरूरी है तू ईश्वर परायण होकर सर्वधर्मान प्रयत्ज मामे कर्म शरणम ब्रज, ये जो गीता की अंतिम बात है, इसको मैं अपने जीवन में धारण करूं, संसार चक्र को, सुख दुख को ईश्वर आज्ञा में देखना शुरू करूं और सुख दुख से ऊपर उठने की कोशिश करूं, तभी सही रूप में मैं स्मरण करने वाला बनूंगा। यदि इस विश्वास के साथ यदि मैंने ईश्वर का स्मरण किया प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम से ईश्वर का स्मरण करना ही भक्ति है, अन्य कोई भक्ति नहीं होती, तभी वास्तव में मुझको सफलता मिलेगी, तभी वास्तव में ये कर्मयोग और भक्ति योग ये मेरे जीवन में उतर सकेगा। अंत में केवल एक प्रश्न उत्तर महर्षि रमण का पढ़कर मैं इस विषय को समाप्त करता हूं। महर्षि से पूछा गया कि भक्ति का क्या स्वरूप है, महर्षि क्या उत्तर देते हैं वो ध्यान से सुनो। ईश्वर के इच्छा के अनुयायी बनो, ईश्वर की इच्छा के अनुयायी बनो, उसी का संकल्प पूर्ण होने दो। ईश्वर के प्रति स्वयं की इच्छा प्रकट करना तो समर्पण के स्थान पर आदेश प्रदान करना हुआ, अर्थात मैं ईश्वर को आदेश दे रहा हूं कि तू ऐसा कर। उसके प्रति आदेश देकर तुम समर्पित नहीं कहे जा सकते, हमें क्या कब तथा कैसे श्रेयस्कर है ये वही जानता है, हमारे लिए कब क्या ठीक है ये वही जानता है, सब कुछ उसी पर छोड़ दो, उसी का उत्तरदायित्व है, तुम सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं उसकी हो चुकी, इसी का नाम समर्पण है, यही भक्ति। तो इसीलिए आपके मानसिक बेचैनी दूर हो, ईश्वर की प्रेम से आप याद कर सकें, इसीलिए विज्ञान कर्म योग और भक्तियों का रखा गया है।